निर्भयता मनुष्य की एक अत्यंत दुर्लभ विभूति है। इसीलिए उपनिषदों में बार बार बड़े ऊर्जस्वित स्वरों में निर्भय होने की सीख दी गई है। भारत में निर्भयता की धारणा इस तथ्य पर आधारित है कि भले ही शरीर का नाश हो जाए पर आत्मा का कभी भी विनाश नहीं होता। जो नाशवान है उसके लिए चिंता करना व्यर्थ है, वह आज नहीं तो कल नष्ट होने वाला है, किंतु आत्मा तो किसी काल में नष्ट नहीं होता। निर्भयता की यह धारणा आत्मा की अमरता के सिद्धांत पर आधारित है। यह सिद्धांत हम में अद्भुत साहस का संचार करता है। हम मर्त्यशील शरीर नहीं हैं, हम तो अजर अमर अविनाशी आत्म तत्व हैं। शरीर का चिंतन दुर्बलता को जन्म देता है, आत्मा का विचार हम में अक्षय शक्ति का संचार करता है। शरीर को तुच्छ मानने से ही महत् कार्य संपादित होते हैं। जो शरीर को तुच्छ मानता है वही त्याग कर सकता है, वही समाज देवता, राष्ट्र देवता या विश्व देवता की सेवा के लिए अपने जीवन को निछावर कर सकता है। शरीर को महान मानने वाले कभी महान नहीं बने। शरीर ही आसक्ति का और समस्त दुर्बलता का कारण है। शरीर सबसे पहले हमें इंद्रियों की तुच्छ सीमा में बांधता है। उस दायरे से किसी प्रकार निकले तो परिवार की सीमा हमें बांध लेती है, उससे आगे किसी प्रकार बढ़े तो जाति की दुर्भेद्य दीवार अपने शिकंजे में हमें जकड़ लेती है। आज जाति, वर्ण, धर्म आदि के भेदों ने राष्ट्र की कैसी दुर्दशा कर रखी है। हमारा सारा चिंतन इन्हीं तंग दायरों में बंधा होता है। जब तक हम इस सीमा के ऊपर नहीं उठेंगे तब तक हमारे सारे प्रयत्नों के बावजूद राष्ट्र ऊपर नहीं उठ सकेगा। साहस दो प्रकार का होता है। एक प्रकार का साहस है तोप के मुंह में दौड़ जाना। दूसरे प्रकार का साहस है अपने को आत्मा मानकर विश्वास करना। कहते हैं कि एक बार सिकंदर महान जब भारत आया तो यहां महात्माओं की खोज में लग गया। उसके गुरु ने उससे कहा था कि जब तुम भारत जाओ तो वहां से एक तत्वज्ञानी महात्मा को अपने साथ सम्मानपूर्वक लेते आना, उससे तुम्हारा और तुम्हारे देश का कल्याण होगा। जब सिकंदर महान ने एक ऐसे ही महात्मा को खोज निकाला और उन्हें अपने साथ देश ले जाने की इच्छा प्रकट की तो साधु ने इसे स्वीकार नहीं किया और कहा, मैं इस वन में बड़े आनंद से हूं। सिकंदर बोला, मैं समस्त पृथ्वी का सम्राट हूं, मैं आपको असीम ऐश्वर्य और उच्च पद मर्यादा दूंगा। साधु बोले, ऐश्वर्य, पद मर्यादा आदि किसी बात की मेरी इच्छा नहीं। तब सम्राट ने साधु को डर दिखाते हुए कहा, यदि आप मेरे साथ नहीं चलेंगे तो मैं इस तलवार से आपको काट डालूंगा। इस पर साधु बहुत हंसे और बोले, राजन, आज तुमने अपने जीवन में सबसे मूर्खतापूर्ण बात कही। तुम्हारी क्या हस्ती कि मुझे मारो। सूर्य मुझे सुखा नहीं सकता, आग मुझे जला नहीं सकती, कोई शस्त्र मुझे काट नहीं सकता, क्योंकि मैं जन्म रहित अविनाशी आत्मा। यह आध्यात्मिक साहस है। स्वामी विवेकानंद ऐसा ही साहस अपने देशवासियों में देखना चाहते थे। वे कहते हैं, ऐ नरनारियों, उठो, आत्मा के संबंध में जागृत हो, सत्य में विश्वास करने का साहस करो। संसार को कोई 100 साहसी नरनारियों की आवश्यकता है। अपने में वह साहस लाओ जो सत्य को जान सके, जो जीवन में निहित सत्य को दिखा सके, जो मृत्यु से न डरे प्रत्युत उसका स्वागत करे, जो मनुष्य को यह ज्ञान करा दे कि वह आत्मा है और सारे जगत में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो उसका विनाश कर सके। तब तुम मुक्त हो जाओगे। कवि विवेकानंद गाते हैं, साहसी जो चाहता है नाश, मिल जाना मरण से, मृत्यु की गति नाचता है, मां उसी के पास आई। कुरुक्षेत्र की धर्मभूमि में युद्धोद्यत सेनाओं के समक्ष गीता का उद्गीरण हुआ। अर्जुन जब मोह में पड़कर अपना कर्तव्य भूल जाते हैं और अज्ञानवश एक ऐसी राह में जाना चाहते हैं जो उनकी अपनी नहीं है, तब श्री कृष्ण को गीता के रूप में संदेश देने की आवश्यकता पड़ी। अतः गीता वह प्रेरणा है जो विभ्रमित मानव को रास्ता दिखाती है, जो उसके यथार्थ कर्म पथ का स्मरण करा देती है। वह हमें ज्ञान के आधार पर संसार में खड़े रहने का मार्ग बताती है। जब हम जीवन की भूल भुलैया में भटक जाते हैं, उस समय वह मार्ग प्रदर्शक बनकर आती है। जब हम आलस्य से अकर्मण्य बन जाते हैं अथवा किसी प्रकार प्रतिक्रिया के फलस्वरूप अपने कर्तव्य कर्मों को छोड़कर दूर भाग जाना चाहते हैं, तब वह कर्म की प्रेरणा लेकर हमारे सामने उपस्थित होती है। इसीलिए गीता को योग शास्त्र भी कहा गया है। योग शास्त्र का तात्पर्य उस आध्यात्मिकता से है जो केवल मात्र सैद्धांतिक न हो, प्रत्युत जो जीवन में गतिशील हो सके, व्यावहारिक बन सके। कई लोगों का मत है कि जो घर बार छोड़कर सन्यासी बनना चाहते हैं उन्हीं के लिए गीता पठनी है, गृहस्थों के लिए नहीं। पता नहीं यह तर्क सर्वप्रथम किसने उपस्थित किया था। जिसने भी किया हो उसने गीता का अध्ययन नहीं किया है। यदि गीता का उद्देश्य वही होता तब अर्जुन को कृष्ण युद्ध करने के लिए क्यों प्रेरित करते? अर्जुन के मन में वैराग्य की भावना आई सी मालूम पड़ती है। वे हाथ के कार्य को छोड़कर कहीं दूर जंगल में चले जाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में कृष्ण उन्हें उत्साह प्रदान करते, उनका हौसला बढ़ाते, पर ऐसा तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता। उल्टे उलाहना के स्वर में वे अर्जुन से कहते हैं, ऐसे विषम समय में यह कायरता क्यों? वे अर्जुन को तरह तरह से युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हैं। उनकी जो मुख्य सीख है वह कुछ इस प्रकार है, मनुष्य को अपने कर्तव्य कर्म से नहीं डिगना चाहिए। कुछ परिस्थितियों के कारण यदि कोई व्यक्ति सहसा अपनी मनोवृत्ति को दूसरी दिशा में मोड़ने लगता हो तो यह समझना चाहिए कि वह अपने स्वभाव के अनुरूप कर्म नहीं कर रहा है। इस प्रकार का कर्म ही परधर्म कहलाता है। मनुष्य यदि निष्ठा के साथ अपने कर्म में लगा रहे तो धीरे धीरे उसे आध्यात्मिक दृष्टि प्राप्त होती जाती है। कोई भी कर्म अपने आप में ऊंचा या नीचा नहीं है, मनुष्य की दृष्टि ही कर्म को निम्न या उच्च बना देती है। हो सकता है कोई कर्म बाहरी रूप से श्रेष्ठ दिखे, पर यदि उस कर्म का करने वाला निम्न और विपरीत भावों से भरा हो तो वह कर्म उस व्यक्ति के संदर्भ में कभी भी उच्च नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार हो सकता है कि कोई कर्म ऊपर से घृणास्पद मालूम पड़ता हो, पर यदि कर्ता का मनोभाव उच्च कोटि का है तो वह कर्म श्रेष्ठ बन जाता है, भगवान की पूजा का अंग बन जाता है। गीता की भाषा में कहें तो वह एक यज्ञ बन जाता है। गीता की शिक्षा का निचोड़ यह है कि प्रत्येक कर्म को यज्ञ स्वरूप बना लो। जिस प्रकार यज्ञ के लिए वेदी की आवश्यकता होती है, हवन कुंड का प्रयोजन होता है, उसमें आहुतियां देनी पड़ती हैं, उस प्रकार का कुछ भी इस कर्म यज्ञ में नहीं करना पड़ता। इसमें तो कर्ता का शरीर ही मानो वेदी है। ईश्वर का स्मरण ही हवन कुंड है और समर्पण भाव ही आहुतियां हैं। जब हम ईश्वर को समर्पित करते हुए जीवन के कर्मों को करते हैं तो वे कर्म हमें बांध नहीं पाते। गीता में कहा गया है, ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्म पत्रम विवाम्भसा। अर्थात तब हमारी स्थिति जल में रहने वाले कमल के पत्ते के समान हो जाती है। कमल का पत्ता जल में रहता तो है पर उसे लिप्त नहीं होता। उसी प्रकार हम संसार में रहते तो हैं पर उसे लिप्त नहीं हो पाते। यह गीता की सबसे बड़ी सीख है और यही गीता का कर्म योग है। मेरे एक मित्र हैं, उन्हें पेड़ पौधों से बड़ा प्यार है, बड़ा जतन करते हैं, ऐसी देखभाल करते हैं मानो वे उनके बच्चे हों। उन्होंने अशोक का एक पौधा लगाया, पौधा बढ़ने लगा, जो डगाली उन्हें अनावश्यक प्रतीत होती उसे वे काट देते। यदि तना उन्हें झुकता नजर आता तो खपच्ची बांधकर सीधा कर देते, ऊपर की शाखा प्रशाखाओं को छांटकर गोल आकार दिया करते। कुछ वर्ष बाद पौधा बढ़कर एक परिपक्व वृक्ष बन गया, कितना सुंदर, कितना मोहक, देखो तो आंखें वहीं गल जाती। मैंने भी देखा देखी अशोक का एक वृक्ष रोप दिया, वह बढ़ने लगा और कुछ वर्ष बाद वह भी एक बड़ा पेड़ बन गया, पर उसमें मित्र के पेड़ सी न तो सुंदरता थी न मोहकता। कारण का चिंतन करने पर मित्र ने बताया कि तुम्हारे पेड़ का विकास बेतरतीब था, अनुशासनबद्ध नहीं था। मित्र ने मुझसे पूछा, क्या तुम उचित समय पर अनावश्यक डगालियों को काटते थे, तने को झुकने से बचाने के लिए खपच्ची लगाते थे? मेरा उत्तर नहीं में था, मतलब यह कि पेड़ का विकास भी यदि हमें मनोवांछित रूप से साधित करना है तो उसे अनुशासन में रखना होगा। मेरी आंखें खुल गईं, देश बौना हो गया है, देश के अंग प्रत्यंग बेतरतीब बढ़े हैं, कारण समझ में आ गया। देश को आजादी के इन 35 वर्षों में अनुशासन की प्रक्रिया में नहीं बांधा गया, सुंदर सुंदर पौधों को सही दिशा नहीं दी गई, इसलिए वे बेतरतीब बढ़कर देश की खुशहाली के साधक होने के बदले बाधक बन गए। हमने आजादी के पहले का वह पाठ भुला दिया कि जब एक सामान्य पौधे को इच्छानुकूल रूप देने के लिए इतनी साधना की आवश्यकता होती है, तब मानव रूपी पौधे को उचित आकार देने के लिए कितनी तपस्या न लगती होगी, और उसका फल प्रत्यक्ष है। हम बड़ी से बड़ी उपलब्धि चाहते हैं पर अनुशासन हमें पसंद नहीं, तो यह उपलब्धि कैसे हासिल हो सकती है? किसी भी क्षेत्र में बड़ा बनने के लिए अनुशासन का पाठ जरूरी है। मैं रविशंकर के सितार वादन की तो प्रशंसा करता हूं, पर तब मैं यह भूल जाता हूं कि इस योग्यता को प्राप्त करने के लिए रविशंकर को अनुशासन की कैसी कड़ी प्रक्रिया में से गुजरना पड़ा होगा। मेरे एक वेद पाठी मित्र हैं, आज वेद पाठ में उनका नाम देशभर में फैला है। उन्हें बचपन में वेद पाठ करते हुए देखता था, पिता छड़ी लेकर पुत्र को वेद पाठ सिखा रहे हैं। आरोह और अवरोह में किसी शब्द में पुत्र ने भूल की तो तड़ से बेंत की मार उन्हें सहनी पड़ती थी। उस समय तो लगता था कि यह कठोरता है, पर आज उसी कठोरता का कितना मीठा फल उन्हें मिला है। तब पिता के प्रति उनका आक्रोश था, आज उन्हीं पिता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए थकते नहीं। यह अनुशासन प्रारंभ में कठोर तो लगता है, पर उसका फल महान बनाने वाला होता है। अनुशासन वह खराद है जो हीरे का मल दूर कर उसे चमका देता है। हम चमकना तो चाहते हैं, पर खराद की प्रक्रिया से गुजरना हमें पसंद नहीं। हम सब कुछ आसानी से शॉर्टकट्स के द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं, हम इसे बुद्धिमानी समझते हैं, पर है यह हमारी नादानी। और हमारी यह नादानी देश को किस प्रकार तबाह कर रही है यह दृश्य तो आंखों के सामने ही है। स्वामी विवेकानंद ने आज से 90 साल पहले कहा था, चालाकी से कोई बड़ा काम नहीं हो सकता। उनका यह कथन आज के संदर्भ में कितना सत्य है। हम चालाकी को ही बड़ा होने का रसायन समझ बैठे हैं। और विडंबना यह है कि हम तो अनुशासित नहीं रहना चाहते, पर दूसरों से अपेक्षा करते हैं कि वे अनुशासन में रहें। क्या यह कभी संभव है? अनुशासन प्रारंभ में बलपूर्वक ही किया जाना पड़ता है, बाद में वह सहज हो जाता है। भय का अनुशासन अस्थाई होता है, वह भय के दूर होते ही नष्ट हो जाता है। इसका अनुभव हमने आपातकाल में किया है। टिकाऊ अनुशासन वह है जो भीतर से आता है, उसमें समाजबोध जुड़ा होता है। निपट स्वार्थी व्यक्ति अनुशासन का बंधन स्वीकार नहीं करता। हमें सामाजिक चेतना का पाठ नहीं पढ़ाया गया है। हमारा धर्म भी प्रचलित तौर पर स्वार्थ का ही पाठ पढ़ाता है, अपने पुण्य और अपने मोक्ष की बात पर जोर देता है। जब तक यह दृष्टिकोण न बदला गया और सामाजिक चेतना को सर्वोपरि स्थान न दिया गया, तब तक अनुशासन हमारे लिए अरण्य रोदन ही सिद्ध होगा और हम एक राष्ट्र के रूप में बौने ही बने रहेंगे। हम सोचते हैं कि जो मंदिर, मस्जिद या गिरजाघर में जाता है, धर्मशास्त्र का पठन करता है, वह ईश्वर का बड़ा भक्त है। पर मात्र इतने से कोई भगवान का भक्त नहीं हो जाता। जो अपने कर्तव्य के पालन में त्रुटि करता है, जिसके अंतःकरण में दूसरों का दुख पीड़ा उत्पन्न नहीं करता, जो स्वार्थी है और महज अपने लिए जीता है, वह मंदिर में जाकर कितना भी घंटा बजाए, मस्जिद में जाकर कितना भी नमाज पढ़े, गिरजाघर में जाकर कितना भी घुटना टेके, वह भगवान का भक्त नहीं बन सकता। जो अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करता और कर्तव्य को बोझ न मान अपने प्रेमास्पद परमेश्वर की सेवा मानता है, वही वास्तव में सबसे बड़ा भक्त है। कथा आती है कि एक बार नारद जी जब वैकुंठ गए तो उन्होंने देखा कि महाविष्णु चित्र बनाने में मग्न है तथा आसपास शिव, ब्रह्मा इत्यादि अगणित देवता विष्णु का कृपा कटाक्ष पाने के लिए लालायित खड़े हैं, किंतु विष्णु है कि उन्हें चित्र बनाने से फुर्सत ही नहीं। चित्रलीन विष्णु ने नारद जी को भी नहीं देखा। विष्णु का यह व्यवहार नारद को बड़ा अपमानजनक प्रतीत हुआ। वे आवेश में विष्णु के समीप गए और पास ही खड़ी लक्ष्मी से उन्होंने पूछा, आज इतनी तन्मयता के साथ भगवान किसका चित्र बना रहे हैं? लक्ष्मी ने अपने स्वाभाविक भृकुटी चांचल्य के साथ कहा, अपने सबसे बड़े भक्त का, आपसे भी बड़े भक्त का। दोहरे अपमानित नारद जी ने पास जाकर देखा तो आश्चर्य से स्तब्ध रह गए। अचल ध्यानावस्थित विष्णु एक मैले कुचैले अर्धनग्न मनुष्य का चित्र बना रहे थे। नारद जी का चेहरा क्रोध से तमतमा गया। वे उल्टे पांव भूलोक की ओर चल पड़े। कई दिनों के भ्रमण के बाद उन्हें एक अत्यंत घिनौनी जगह पर पशु चर्मों से घिरा एक चमार दिखाई दिया, जो गंदगी और पसीने से लथपथ हो चमड़ों के ढेर को साफ कर रहा था। पहली दृष्टि में ही नारद जी ने पहचान लिया कि विष्णु इसी का चित्र बना रहे थे। दुर्गंध के कारण नारद जी उसके पास न जा सके। आड़ में रहकर दूर से ही उसकी दिनचर्या का निरीक्षण करने लगे। संध्या होने को आई, किंतु वह चमार न तो मंदिर में गया और न आंख मूंदकर उसने क्षण भर के लिए हरि स्मरण ही किया। नारद जी के क्रोध की सीमा न रही। अधमाधम चमार को श्रेष्ठ बताकर विष्णु ने उनका कितना बड़ा अपमान किया है। आवेश में अंधे हो विष्णु को श्राप देने के लिए उन्होंने अपनी तेजस्वी बाहु ऊपर उठाई ही थी कि लक्ष्मी ने प्रकट हो उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, देवर्षे, भक्त की उपासना का उपसंहार तो देख लीजिए, फिर जो करना हो कीजिए। उस चमार ने चमड़ों के ढेर को समेटा, सबको एक गठरी में बांधा, फिर एक मैले कपड़े से सिर से पैर तक शरीर को पोंछा और गठरी के सामने झुककर विनय विह्वल वाणी में कहने लगा, प्रभो दया करना, कल भी मुझे ऐसी ही सुमति देना कि आज की तरह ही पसीना बहाकर तेरी दी हुई इस चाकरी में सारा दिन गुजार लूं। और नारद जी को विश्वास हो गया कि वह चमार विष्णु को क्यों सर्वाधिक प्रिय है। तो ईश्वर के बंदे होने का यह मतलब नहीं कि हम अपने कर्तव्य कर्मों की उपेक्षा कर संसार से पलायन कर जाएं, या कि आलसी बनकर पड़े रहें और दूसरों की कमाई रोटी तोड़ते रहें। जो ईमानदारी से अपना और अपने लोगों का पेट नहीं पाल सकता वह ईश्वर की क्या बंदगी करेगा। जिसने दूसरे के लिए पसीना बहाना नहीं जाना उसकी ईश्वर भक्ति का क्या तात्पर्य। बहुधा हमारी ईश्वर भक्ति एक दिखावा होती है। हमारा धर्म स्थानों में जाना या धर्म ग्रंथों का पाठ करना भी या तो दिखाने के लिए होता है अथवा व्यापार के लिए। यदि हम धार्मिक कहलाने वाले इन कृत्यों के द्वारा भौतिक लाभ ही पाना चाहें तो हमारा ईश भजन भी व्यवसाय बन जाता है। कसौटी यह है कि हम ईश्वर को चाहते हैं या ईश्वर से चाहते हैं। सबसे बड़ा भक्त वह है जो ईश्वर को चाहता है और उसके बनाए जीवों की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहता है। वह तो यही कहता है, न तो हम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुख तप्ताना प्राणिनाम आर्तिनाशनम। मुझे न तो राज्य की चाह है न स्वर्ग की और न मुक्ति की ही, मैं तो बस शोक संतप्त प्राणियों के दुख कष्टों को मिटाना चाहता हूं।